ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्सम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयहं ददाति स्वपदांतिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज पवित्र दिन है। दो चीजें हैं, एक तो गौर निताई का शुभ आगमन आज के दिन हुआ था। क्यों ठीक है, तो वैसे कुछ इतना नहीं है, हम तो ठीक है, ठीक फिर कर लीजिए जैसे भी। रुक गया।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वो लोग आ जाएंगे। तो दो चीजें हैं आज, एक तो है श्री श्री दयाल निताय सची सुत। कई बार डिवोटीज को लगता है कि गौर निताय का नाम नहीं होना चाहिए, उनका नाम ये इनफ है। कौन सा? गौर निताय। तो लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कई सारे नाम हैं। जब नीम ट्री के नीचे उन्होंने जन्म ग्रहण किया तो उनका नामकरण निमाई के रूप में किया गया सीता ठाकुरानी के द्वारा। और जब कुछ नवदीप की स्त्रियों ने जगन्नाथ मिश्र को कहा कि आप दौड़ो और देखो अपने बालक का श्रीमुख, तो जगन्नाथ मिश्र जब दौड़ते हुए गए और अपने बालक का मुख देखा तो उन्होंने क्या नाम रखा? गौरांग रखा। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौड़दय पुष्पवंतो चित्र छंदो तमोनुदो, कि ये गौड़दय में गौड़ का जो गौड़ देश, बंगाल को पहले गौड़ देश कहा जाता था, तो वहां के जो राजा थे, तो ये पूर्व दिशा में क्षितिज से जैसे सूर्य उदित होता है उसी प्रकार से ये दोनों भाई चंद्रमा के समान उदित होते हैं और क्या करते हैं? सारे अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर गुणगान करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, तो उनको इस चंद्रमा की उपमा देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे गौर और निताय प्रभुपाद ने उनको कहा मायापुर चंद्र, क्या कहा मायापुर चंद्र। जब प्रभुपाद ने अपना ये आंदोलन स्टार्ट किया और जहां इस्कॉन का टेंपल बनाया, तो प्रभुपाद एक डेटी अपने रूम में रखते थे। आप मायापुर जाते हैं तो वहां प्रभुपाद के बड़े से गौरांग महाप्रभु है, देखे आपने लोटस बिल्डिंग में, तो वो ऐसे खड़े हैं और सबसे सुंदर है, ऐसे सुंदर गौरांग देव ने देखे, बहुत बड़े हैं, प्रभुपाद के रूम में रखे जाते हैं। तो उनका नाम प्रभुपाद ने रखा है मायापुर चंद्र और हमेशा अपने पास रखते थे वहां, और इसी कारण से उनका वो जो मंदिर है मायापुर मंदिर, उसका नाम क्या है मायापुर चंद्रोदय मंदिर। हाँ, तो मायापुर चंद्रोदय मंदिर, तो चंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है। क्यों शीतलता चाहिए हमें? क्योंकि हम रोज सुबह उठ के एक पंक्ति गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। तो शायद ठंड के दिनों में इतना महसूस नहीं होता दावा भी नहीं, लेकिन चाहे ठंड हो या गर्मी हो, लाइफ में हमेशा क्या रहती है, गर्मी रहती है ना, दावाग्नि से जल उठते हैं। इतनी इतनी विपदाएं आती है दिन में, हम जीवन में जो हम सोच नहीं सकते, शारीरिक है, मानसिक है, पड़ोसी है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, ऑफिस का स्ट्रगल है, तो ये दावाग्नि तो हमेशा लगी हुई है। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, दावाग्नि से बाहर निकलने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि दावाग्नि को बुझाने के लिए मेरे सारे भौतिक प्रयास विफल है। भौतिक जितने भी हम अटकलबाजी करें, भौतिक जितना भी हम चीजें इकट्ठा करने का प्रयास करें, संसार की इस दावाग्नि को शमन करना असंभव है। किस चीज के ऊपर हमें निर्भर रहना होगा? बादल के ऊपर, वहां की जो बारिश के ऊपर, और वो बारिश करते हैं त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण, प्राप्तस्य कल्याण क्या है आगे, गुणार्णवश वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो मतलब आध्यात्मिक गुरु ये दावाग्नि का शमन करते हैं और वो ये जो कृपा की वर्षा करते हैं सांसारिक जीवों पर, और वो कृपा कहां से प्राप्त करते हैं, प्राप्तस्य कल्याण, जो परम कल्याण करने वाले कृष्ण है उनसे उस कृपा को प्राप्त करते हैं और उसी कृपा को सांसारिक जीवों के ऊपर डाल देते हैं, जिनके द्वारा उनके जीवन की जो अग्नि है, दावाग्नि है, वो शमन होती है। इसी कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को बहुत कम रूप में भगवत रूप में प्रदर्शित किया है, लेकिन अधिकतर जो अपनी कृपा प्रदर्शित की है वो एक भक्त के रूप में, और अधिक से अधिक जीवों का उन्होंने कल्याण किया है। तो इसी कारण से हमें हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन में किसकी आवश्यकता है, एक भक्त की आवश्यकता है। हाँ, और इसी कारण से भगवान स्वयं ही सोचते हैं द्वापर के अंत में, अरे ये क्या हो गया कि मेरी भगवत भजन तो कोई कर नहीं रहा है। इस विचार को भगवान ने सोचा तो स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इसलिए प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को ले गए विदेशों में, और वहां जब पहली बार गौर निताय की स्थापना की उन्होंने एक मंदिर में, वहां सारे म्लेच्छ यवन आदि थे और रेयरली हरि नाम का उच्चारण उन्होंने शुरू किया था, वो किसी विधि विधान आदि को तो नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने गौर निताय को अल्टर में रखा और प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठे सामने प्रवचन देने के लिए, तो उस समय प्रभुपाद ने एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? लोचनदास ठाकुर का गीत गाना ही था उन्हें। उसके पहले शब्द उन्होंने उच्चारित किए परम करुणा। क्या शब्द थे? परम करुणा। कृष्ण तो ठीक है, कृष्ण को कहा जाता है हे कृष्णा करुणा सिंधु, लेकिन वही सागर जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके बाहर आता है तो वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु है। करुणा की परम सीमा जो क्रॉस करते हैं वो चैतन्य देव है। इसलिए हमें कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा की परम आवश्यकता है। प्रभुपाद ने जैसे ये दो शब्द उच्चारित किए परम करुणा, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं उनका हृदय इतना भगवत प्रेम से भरा रहता है कि कृष्ण से संबंधित एक एक शब्द एक एक वस्तु उनको वो कर देती है, उनके हृदय में भगवत प्रेम को बहा देती है। सोचो हम हजार बार परम करुणा बोलते रहते हैं, कुछ होता है हम में? कुछ नहीं होता, बल्कि सोचते कब बंद करें कीर्तन, है ना। लेकिन वहां केवल ये शब्दों ने प्रभुपाद को इतना महाप्रभु के प्रति प्रेम से ये कर दिया। जैसे किसी माँ का अपने बच्चों को देखने मात्र से प्रेम उमड़ता है, ये शब्द सही, उमड़ना। तो वैसे महाप्रभु के गुण को प्रभुपाद ने केवल सोचा, है ना। भगवान के जो भक्त है, नाम रूप गुण लीला, इसमें से कोई भी चीज उनके संबंध में आती है, संपर्क में, उसको सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, देखने मात्र से कृष्ण के लिए उनके हृदय में उमड़ पड़ते हैं प्रेम की जो भावना है, आसक्ति की जो भावना है। तो प्रभुपाद के हृदय से उमड़ पड़े और उनके आंखों से निकल पड़ी। प्रभुपाद रोने लगे, सारे डिवोटी शांत हो जाते हैं वहां कि परम करुणा। प्रभुपाद ने कहा, हे महाप्रभु, आपके जैसे कोई करुणा में कौन हो सकता है इस संसार में। इसी कारण से लोचनदास ठाकुर कहते हैं, परम करुणा पहो द्विजन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। हम भी केवल आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आनंद छुपा है गौर और निताय के गुणगान में। जितना अधिक हम गौर निताय की प्रशंसा गुणगान करते हैं, दो प्रकार से गौर निताय का गुणगान किया जा सकता है। एक है उनके जो लीला चरित्र आदि है उसका उच्चारण करना, और दूसरा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये दोनों महाप्रभु का गुणगान है, दोनों चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन है। कि एक तो उनके नाम रूप गुण लीला में भी एक भक्त को डूब जाना चाहिए, और दूसरा दूसरों को भी महाप्रभु की कृपा देने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं, और ऐसे भगवान केवल शांत नहीं रहते हैं, बल्कि गौरनिताय क्या करते हैं, अपने अलग अलग भक्तों को भेज देते हैं। तो प्रभुपाद जैसे महान भक्तों को भेजा हमारे जीवन में, और वैसे ये महान आचार्य हुए हैं रिसेंट, जिनका आज क्या है, तिरोभाव है। कौन से आचार्य? श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो एक भक्त को जब मौका मिलता है भगवान के भक्तों की प्रशंसा करने का, तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि भगवत भक्ति में हम उन्नति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति एप्रिसिएशन की भावना क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे एप्रिसिएशन की भावना हमें नहीं बढ़ रही है दूसरे भक्तों को, वैष्णवों को देखकर, उनकी सेवाएं, उनके अचीवमेंट आदि, तो समझना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन नीचे की ओर गिर रहा है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब भी मौका मिलता था अपने भक्तों की प्रशंसा करने का, तो चैतन्य महाप्रभु के एक मुख नहीं, कृष्णदास कविराज कहते थे कितने मुख हो जाते थे, पांच पांच, कितने, पांच, और हजारों हजारों भी वर्णन आया है, सहस्र मुखों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की प्रशंसा करते थे। अभी हमारे लिए वो तपस्या है, क्या है, तपस्या है। एक चीज अच्छी लगती है, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं के अचीवमेंट्स के बारे में बोलना। लेकिन जब हमें मौका मिलता है दूसरों के प्रशंसा करना, तो हमें मेडिटेट करना पड़ता है। अरे क्या है उसमें, ऐसा क्या प्रशंसा करे उसकी इतने, हाँ सब कुछ तो यहाँ है। तो इसलिए उससे क्या होता है कि हम कृष्ण की आंखों से गिरने लगते हैं। तो भगवान आनंदित होते हैं, भगवान एंजॉयमेंट प्राप्त करते हैं जब एक भक्त दूसरे वैष्णवों की प्रशंसा करता है, और यही वास्तव में वैकुंठ वातावरण है। क्या है? वैकुंठ वातावरण। वैकुंठ वातावरण का मतलब ही है कि जहां हर कोई भक्त दूसरे को देखता है कि वो मुझसे बढ़कर है कृष्ण की सेवा में, वो बहुत क्लोज है। भागवतम में वर्णन आता है, जब वैकुंठ में ये जो हनी बीज है वो भी जब अपना गुंजार या आवाज करती है तो सारे रुक जाते हैं उसको सुनने के लिए, क्या रे वो बेटर गा रही है कृष्ण के गुणगान में। हाँ, तो उसी प्रकार से हमें भी ये जो एप्रिसिएशन की भावना है उसको उजागर करना सीखना चाहिए, उजागर करना चाहिए और इस भावना को अपने जीवन में विकसित करना चाहिए। इसलिए कब हम जब भक्तों की प्रशंसा उनको एप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, उनको गुणों का वर्णन करना नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए असंभव है आध्यात्मिक गुरु की प्रशंसा करना। इसलिए रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को जो फाइनल उपदेश देते तो उसमें वो कहते हैं, एक भक्त को अपना समय दिन में निश्चित रूप से डिवोट करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के गुणों का स्मरण करने के लिए और आध्यात्मिक गुरु की प्रशंसा हेतु कुछ सोचने के लिए या कुछ बोलने के लिए, ऐसा एक शिष्य को करना चाहिए। हाँ, तो वो हमारे लिए भारी हो जाता है। इसलिए तो जब व्यास पूजा का समय आता है और बोला जाता है कि ऑफरिंग लिखनी है आपको, तो भक्तों को सबसे बड़ी तपस्या महसूस होती है ऑफरिंग लिखना। फिर कितने फोन आते हैं, SMS आते हैं। इवन मुझे याद है जब महाराज यूरोप जाते हैं उस समय पहले ना समर में जाते हैं, व्यास पूजा से पहले आते, तो जाने से पहले मुझे बता के जाते थे कि सबको बोलो कि व्यास पूजा ऑफरिंग लिखना है। उनको पता है शिष्यों की जो दयनीय स्थिति है। और फिर आते थे तो उस समय मेरा सेवा होता था सारे व्यास पूजा ऑफरिंग चाहे कोई मेल से या पोस्ट से हो वो भेजना मुंबई। तो फिर आके पूछते थे, सर्व साक्षी सबने व्यास पूजा ऑफरिंग भेजी है क्या? तो देखा जाता था कि डेट्स फाइनल डेट्स मंगल आरती में हम अनाउंस कर करके थकते थे, उसके बाद ही थोड़ी धीरे धीरे आने लगती थी। तो मतलब इतनी अधिक बद्धता है, इतनी अधिक कमी है। तो हम कैसे कर पाएंगे आध्यात्मिक गुरु का गुणगान, कैसे कर पाएंगे उनके गुणों का वर्णन यदि हमने ये नहीं सीखा वैष्णव के गुणों की प्रशंसा करना। तो वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। हरि बोल। तो चाहे जो भी हो हमें इस भावना को लेना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण सबसे अधिक एंजॉयमेंट अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं जब एक भक्त ऐसे महान भक्त या भक्तों का गुणगान अपने मुख से करता है। और चैतन्य महाप्रभु को भी छोड़ते नहीं थे, जैसे उनको मौका मिलता था उनके भक्तों के बारे में चर्चा करने का चैतन्य महाप्रभु कूद पड़ते थे और हम भागना चाहते हैं। कई बार हम फोन में कोई प्रशंसा भी करें एक भक्त की तो हम बहाना बनकर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बन के फोन बंद करवाते हैं या फिर स्किप करते, कुछ सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर देंगे, क्योंकि सहा नहीं जाता। क्या नहीं होता? सहा नहीं जाता। आर ना सहे, भक्तिनाथ ठाकुर कहते कितनी मेरी कंडीशन है, हमें सहन नहीं कर पाता भक्तों के जो गुणगान है, प्रशंसा है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का एक लक्षण है कि दूसरे भक्तों के प्रति एप्रिसिएशन की भावना हमारे अंदर आए, क्योंकि भक्त भक्ति जन्म मूल है साधु संगत। भक्ति का जो जन्म है वो भक्तों के संगति में होता है। मैं रिसेंटली पद्म पुराण पढ़ रहा था तो उसमें भक्ति देवी का वर्णन आ रहा है भागवत महिमा में। तो वहां भक्ति देवी एक दिन नारद जब जा रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो बहुत अच्छे से सजे हुए थे, और देखा वो अकेली नहीं है, उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियां हैं और अलग अलग स्त्रियों ने अपने हाथों में कुछ सेवा करने का साधन लिया है, किसी ने चामर, किसी ने मोर पंख, और ये जो सुंदर स्त्री है सबसे बीच में उसको सब फैन वगैरह कर रहे हैं। लेकिन उसको जब देखा जाता है तो बहुत विचलित है, बहुत चिंतित है, और वो एक जगह खड़ी नहीं हो पा रही है, कभी यहां जा रही है कभी वहां आ रही है, आगे पीछे हो रही है, और उसके पास दो पुरुष सो रहे हैं, और वो कौन है, एक ज्ञान और एक वैराग्य है, वृद्धावस्था में सो रहे हैं। कभी कभी ये युवती तरुणी जाती है उनको हिलाती है, अरे बोल उठो, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, तो वो दोनों ने उठते, तो ये बहुत चंचल चिंतित रहते। तो नारद दूर से ये देख रहे थे इन सबको, नारद ने सोचा जाके पूछता हूँ इस लेडी को क्या हो रहा है। नारद जब गए तो उन्होंने कहा मैं ये कब से देख रहा हूँ आपकी इस विचलित स्थिति को, आप मुझे समझाइए। तो वो बताती है, अपना परिचय देती है। तो क्या परिचय देती, मैं कौन हूँ? भक्ति देवी हूँ। नारद वास्तव में सबसे अधिक आनंद भक्ति देवी को आता है, वो नारद के हृदय में रहने में हाँ वर्णन आता है। बाद में नारद उनकी बहुत सहायता करते, वो कहती है नारदा आपका हृदय में मैं तो नृत्य करती हूँ और आपके हृदय को छोड़कर कभी भी जाऊंगी नहीं। क्यों? नारद वास्तव में सदैव कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं। तो ऐसे नारद ने जब पूछा, उन्होंने कहा मैं तो भक्ति देवी हूँ और जितनी ये देख रहे हो सारी सेविकाएं हैं, सारी नदी नदियां आदि है और मुक्ति ये सारी सेवा सेवा कर रही है। मुक्ति भी मेरी क्या कर रही है? सेवा आदि कर रही है। लेकिन इतना दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत में। कहा? द्रविड़ देश में। मैंने जन्म तो द्रविड़ देश में ग्रहण किया, लेकिन जब मैं कर्नाटका में आए तो थोड़ा सा और तेज आया, बड़ी हो गई। वहां से आगे मैंने वॉक किया तो मैं महाराष्ट्र में पहुंची। महाराष्ट्र में तो मैं फली फूली नहीं, हाँ नव यवनता मुझे प्राप्त हुई। और लेकिन मैं गुजरात में जब मैंने प्रवेश किया, पाखंडियों के कारण मैं जर्जर हो गई, बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जा रहा था। और अभी ब्रज में जब आए हो तो अभी फिर से मुझे अपना वही हाँ जो जोश है या वही युवा अवस्था है वो प्राप्त हुई है। लेकिन मेरे जो पुत्र है ये दोनों वृद्ध के वृद्ध है और अचेतन है। तो मुझे कहना क्या था यहाँ कि भक्ति देवी का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। और आप देखेंगे कि ये जो चारों संप्रदाय के चार आचार्य हैं, उन कहाँ जन्मे हैं? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में वास्तव में भक्ति का जन्म है, वहां महान महान आचार्यों ने जन्म लिया है। तो ऐसे महान आचार्य रामानुजाचार्य का भी जन्म वहां होता है और आज के दिन वो अप्रकट हो जाते हैं। तो सबसे अधिक दुख जब एक वैष्णव अप्रकट हो जाता है तो वो किसे होता है? बल्कि शास्त्र कहते हैं एक शिष्य का इतना अनुराग अपने आध्यात्मिक गुरु को होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए, और गुरु इस संसार से जब अप्रकट होते हैं तो उसको अनवरत रूप से क्रंदन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। अब देखो प्रभुपाद जब शरीर त्याग रहे थे तो उनके शिष्य कैसे रो रहे थे। जैसे गाय का बछड़ा ये हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वो क्रंदन करती है। तो जनरली उतना आसक्ति हमारा अपने पत्नी बच्चे रिश्तेदार उनसे होता है। जब उनमें से कोई शरीर त्यागता है तो हमें रोना अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन वही अटैचमेंट वही आसक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? आध्यात्मिक गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने वो गीत कब लिखा? जे अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर, वो रोते हुए लिखा। हम अभी खेतुरी गए थे दिसंबर में, तो वो स्थान गए जहां नरोत्तम दास ठाकुर बैठा करते थे एक वृक्ष के नीचे, एक टीला सा है, और उसके वहां बैठकर रोया करते थे और इन गीतों को लिखा करते थे। जैसे उन्होंने उनको पता चला कि एक महान उनके जो संगी है श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने इस धरातल को छोड़ दिया है, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने घर गांव छोड़कर जंगल में भागे और वहां जाकर इतना क्रंदन किया, इतना क्रंदन किया, उन्हें लगा कि क्यों मैं जीवित हूं। ऐसे श्रीनिवास आचार्य को मैंने अपने जीवन से खो दिया। तो एक ऐसा आसक्ति हमें आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव के लिए होना चाहिए। इसी कारण से तो देहूति और कपिल के संवाद में हम सीखते हैं, जब देहूति कहते कि कितनी दुर्भाग्यशालिनी स्त्री हूं मैं, कि मुझे तो पति इतना अमेजिंग मिला, कौन थे? कर्दम मुनि। और पुत्र कौन है? साक्षात भगवान है कपिल। इतना मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, लेकिन अनियंत्रित इंद्रियों के कारण मैंने ये सुवर्ण संधि को अपने जीवन से खो दिया, मैं अपने अनकंट्रोल इंद्रियों के कारण। तो देवती उनको कहती कि अपने पुत्र से पूछती है कपिल देव से कि बताइए क्या करना चाहिए मुझे। तो वो कहते हैं हाँ वो जब वो वर्णन करते हैं कि हमें जो साधुज है वैष्णव या गुरु आदि है उनके प्रति आसक्ति का उदय होना चाहिए, उनके प्रति वास्तव में हमारा प्रेम या अफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अफेक्शन हमें क्या देता है, मोक्ष द्वारम अपहवृतम, कि मोक्ष के दरवाजे खोल देता है, और उनके अलावा जो आसक्ति है वो हमें नरक के द्वार खोलता है। फिर वो अगला प्रश्न पूछते कि ऐसे कौन है वैष्णव साधु, तो फिर वो हम फेमस श्लोक सुनते हैं, हमारे महाराज हमेशा उस पर लेक्चर देते हैं। हाँ क्या है वो श्लोक, तितिक्ष्वः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेयिनः अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तो ये साधु के अलंकरण, साधु के भूषण है। हाँ तो ये चीज हमें सुनने को मिलती है श्रीमद् भागवतम से। तो सबसे अधिक दुख एक वैष्णव प्रकट होता है, तो सबसे अधिक दुख किसे होता है, तो पृथ्वी देवी को होता है। किसे? पृथ्वी को होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने जब गीत लिखा तो वो कहते ठाकुरा वैष्णव गान अवनीर सुसंपद, कि जो एक भगवान आपके जो भक्त है वैष्णव गण है वो अवनी, अवनी मीन्स पृथ्वी देवी, उसके संपदा है। और वास्तव में पृथ्वी देवी की संपदा डिवोटीज है, जितने डिवोटीज नाचते हैं गाते हैं भर जाता है ये संसार, पृथ्वी देवी को आनंद आता है। जैसे किसी माँ को अच्छा लगता है ना, चार पांच बच्चे उसके शरीर पर खेलते हैं, जैसे हम गांव में थे तो कोई मदर को अच्छा लगता है जब चार पांच बच्चे हो उसके पास, और कोई इधर बैठा है कोई यहाँ बैठा है कोई उसकी साड़ी खींच रहा है ना, आनंद लगता है कि नहीं लगता मदर को? लगता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी देवी है, वो इतनी आनंदित होती है जब जब इन वैष्णवों को देखती है, वैष्णव का नाचते हैं चल, एक एक चरण महान वैष्णव पृथ्वी पर डालते हैं, तो पृथ्वी देवी भाव विभोर हो जाती है। और जब देखती है उसको भार किसका महसूस होता है, आसुरों का, नास्तिकों का, हाँ ऐसे लोगों का। लेकिन जब इस वैष्णव इस धराधाम को छोड़ते हैं तो ये जो मेदिनी है, मेदिनी शब्द यूज हुआ है पृथ्वी के लिए, तो बहुत दुख करती है, रोने लगती है। हाँ, इसी कारण से महाप्रभु ने भी हरिदास ठाकुर के लिए कहा कि हरिदास जब वो त्यागने वाले थे शरीर, तो उन्होंने कहा रत्न विहीन हैल मेदिनी। हरिदास ठाकुर हम सबके आंखों से चले गए, तो वास्तव में पृथ्वी ने अपना रत्न क्या कर दिया है, खो दिया है, इतना पृथ्वी का अफेक्शन है। बल्कि हरिदास ठाकुर के प्रति महाप्रभु का इतना अटैचमेंट था, प्रेम था, महाप्रभु ने जैसे ये सुना, जब उन्होंने अपना हार्ट रिवील किया हरिदास ठाकुर के प्रति, महाप्रभु के प्रति, कहा कि मैं आपके दोनों चरण कमलों को अपने छाती में धारण करना चाहता हूं, और नेत्रों से आपके मुख कमल को पीना चाहता हूं, और जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करना चाहता हूं, हाँ अब मैं इस धराधाम को त्यागना चाहता हूं। महाप्रभु ने जैसे ही सुना तो चैतन्य महाप्रभु रो पड़े, उन्होंने कहा ये इच्छा कृष्ण आपकी पूरी करेंगे। और ये सोचकर ही वो कंपित होने लगे कि हरिदास ठाकुर मेरे जीवन से चले जाएंगे। कई बार हमें अच्छा लगता है कि भक्त मेरे जीवन से निकल जाए, क्योंकि हम टॉलरेट करते रहते एक दूसरे को, नहीं। लेकिन वहां महाप्रभु कहते हरिदास का संग मुझे सबसे प्रसन्नता देता है। हरिदास ठाकुर जा रहे हैं ये सोचकर ही महाप्रभु को दुख वेदना होती है। हाँ तो वो कहते हरिदास तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, तो हरिदास ठाकुर कहते कि महाप्रभु देखो आपके पास तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, आप बड़े बड़े भक्तों के संग में सदैव विचरण करते हैं, मेरे जैसा छोटा नगण्य क्षुद्र तुच्छ ये भक्त चला भी जाए आपके जीवन से आपको कुछ फर्क नहीं पड़े। और यही भावना हमारे लिए होनी चाहिए स्वयं के लिए, हमारे लिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं, अत्यधिक इंपॉर्टेंट डिवोटी हूं, हाँ नहीं। हमें ये भावना हरिदास ठाकुर का जो मूड या भाव है वो हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, और हरिदास ठाकुर कहते हैं हे चैतन्य चैतन्य देव, या पृथ्वी में कई सारी चेटिया, कोई एक मर जाती तो कोई उसके बारे में सोचता थोड़ी है, हाँ तो वैसे मैं चला जाऊं इस संसार से तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आसक्त थे हरिदास ठाकुर से, तो उसी प्रकार से हाँ ये जो पृथ्वी है वो भी दुखी हो जाती है जो वैष्णव इस धराधाम को त्यागता है। तो आज के दिन ही रामानुजाचार्य ने क्या किया था, इस भौतिक जगत को छोड़ दिया था और अमेजिंग रूप से उन्होंने छोड़ा था। कैसे त्याग किया था, बल्कि जैसे ही उनकी तो बहुत अचीवमेंट्स हैं, रामानुजाचार्य का जो चरित्र है वो बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे पर्सनली मुझे दो आचार्य बहुत मेरे फेवरेट हैं, एक है श्रीपद रामानुजाचार्य और दूसरे है नरोत्तम दास ठाकुर। इन दोनों के बारे में हाँ इतना कुछ है, इतनी ग्लोरीज है कि जिनका वर्णन करने में इतना सुख छुपा हुआ है, आप उस सुख की तुलना नहीं कर सकते। श्रीपद रामानुजाचार्य कई सारी लीलाएं हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य को कहा जाता है श्री संप्रदाय में उद्धारक आचार्य। कौन से आचार्य? उद्धारक, धारक नहीं, उद्धारक, जो सबका उद्धार करने वाले हैं। और उनका उनका स्पेशल स्थान है श्री वैष्णव संप्रदाय में। तो हमें केवल मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, तो हमें बाकी वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, उन वैष्णव के बारे में भी जानना चाहिए, उनके ग्लोरीज का, उनका कृष्ण के प्रति समर्पण, उनका प्रेम, सेवा की भावना। महाप्रभु को इसलिए तो रामानुजाचार्य आकृष्ट करते हैं। महाप्रभु ने दो चीजें रामानुजा के संप्रदाय से ली और वो क्या थी, एक था अनन्य भक्ति, अनलॉयड डिवोशनल सर्विस, और दूसरा था भक्त जन सेवा, होल हार्टेडली बिना किसी अभिलाषा को रखते हुए अपने आप को तुच्छ भावना हृदय में धारण करके भक्तों की सेवा में लगना। तो भक्त जन सेवा, अनन्य भक्ति, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंदोलन में लिया और वो डाला। और प्रभुपाद के आंदोलन में भी देखते हैं, प्रभुपाद ने कितना जोर दिया है, किसी और मिशन में अनन्य भक्ति की बात नहीं होती है, भक्ति करते रहो बस सारी इच्छाओं के साथ। यह शुरुआत से ही न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मणि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वयि। यहाँ नया नया एंट्री करता है उसी को यही सिखाया जाता है। तो भक्ति अनन्य भावना से होना और दूसरा है वैष्णवों की सेवा में रत होना। तो रामानुजाचार्य अवतरित होने से पहले ही उनकी परंपरा में कई सारे आचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य के तो कई गुरुज थे, 5 गुरु थे, उनमें से उनसे भी एक महत्वपूर्ण थे यमुनाचार्य। उनके ऊपर जो आचार्य थे यमुनाचार्य, यमुनाचार्य से ऊपर थे नाथ मुनि, उनसे ऊपर आगे कई आचार्य और 12 अलवर हुआ करते थे। तो जब ये नाथ मुनि जो एक महान आचार्य हुए उनके संप्रदाय में, उन्होंने यमुनाचार्य को कहा कि एक टाइम आएगा आगे चलकर एक ऐसा वैष्णव प्रकट होगा कि वो हमारा भी उद्धार करेगा। कौन कह रहे? गुरु कह रहे हैं कि ऐसा शिष्य आएगा वो हमारा भी उद्धार करेगा। और यही खासियत है श्री वैष्णव संप्रदाय की। वहां इवन उन्नत से उन्नत भक्त भी अपने आप को क्या सोचता है, इवन मेरा शिष्य भी, वो डिवोटी भी क्या है, मुझसे उन्नत है। और यही भावना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने भक्तिमय जीवन में लगाई थी। उनके शिष्य आते थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते थे, दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। और या नाथ मुनि और यमुनाचार्य, ये रामानुजाचार्य प्रकट होने से पहले उनका विग्रह बनाया था और उसकी अर्चना भी शुरू कर दी थी उन्होंने, सोचो। इसी कारण से वो कहते कि ये हमारे उद्धारक है। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय की खासियत है, वहां गुरुजन भी इस विनम्रता का भाव अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने सिखाया, उत्तम हैया आपना के माने अधम। एक भक्त उन्नत होकर भी सदैव अपने आप को तुच्छ समझता है और कृष्ण के गुणगार और उनकी सेवा में सदैव रत होता है। तो जब रामानुजाचार्य तिरुपति गए थे, फर्स्ट टाइम, और वहां उन्होंने देखा तिरुपति तो नीचे टाउन है, ऊपर क्या है तिरुमला हिल है, हिल के ऊपर भगवान रहते हैं। तो हिल कोई ऐसी वैसी हिल नहीं है, वो साक्षात अनंत शेष है। कौन है? अनंत शेष। जैसे हम गोवर्धन जाते तो साक्षात विष्णु है, कृष्ण है, तो वैसे वो हिल भी अनंत शेष है। रामानुजा जब वहां पहुंचे तो उनको लगा कैसे मैं अनंत शेष के ऊपर पांव दूं, कहते ऊपर नहीं जा सकता। और दूसरे डिसाइपल के गुरुदेव आप नहीं जाएंगे तो फिर हम भी कैसे जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। तो जब हिल के ऊपर यमुनाचार्य के बहुत वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे जिनका नाम था शैलपूर्ण, शैलपूर्ण रामानुजा के मदर के भाई थे, उनके मदर के ब्रदर थे। तो रामानुजा क्या कहेंगे जो, हाँ, तो जब उनकी मदर थी कांतिमती और उनकी उनकी सिस्टर थी कांतिमती की दीप्तमती, हाँ, तो जब कांतिमती का विवाह, हाँ, श्री पेरुम्बुदूर जो रामानुजा का बर्थ प्लेस है वहां एक महान ब्राह्मण आसुरी केशवाचार्य से हुआ, तो कई दिनों से उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वहां वो चेन्नई जाते हैं जहां पार्थ सारथी का मंदिर है। पार्थ सारथी विग्रह के पास जाते हैं दोनों पति पत्नी और कहते हैं हमें तो पुत्र आपके जैसा ही चाहिए, अभी भगवान के जैसे पुत्र कौन हो सकता, भगवान ही हो सकता। तो रामानुजा उनके गर्भ से प्रकट होते हैं। ये शैलपूर्ण जब अपने सिस्टर का दोनों सिस्टर को बालक एक साथ ही हुए देखने गए तो देखा ये असामान्य बालक है, तो इन्होंने दोनों का नामकरण रखा, हाँ, इनका नामकरण रखा रामानुजा और उनके उनका जो दूसरे से जो पुत्र प्रकट हुआ था उनका नाम रखा था गोविंद। तो ये शैलपूर्ण सन्यासी थे। तो जब ये तिरुमला हिल के ऊपर थे तो इनको पता चला कि रामानुजाचार्य आए हैं नीचे, हिल के नीचे हैं, उनका स्वागत करना होगा। तो वो चले जाते हैं, वो सोचते हैं तुरंत मालाएं उठाते हैं, हाँ, कुछ प्रसाद आदि लेकर वो पूरे पहाड़ को उतरते हुए नीचे पहुंचते हैं और रामानुजा के पास जाते हैं। रामानुजा तो बहुत उनसे जूनियर थे। रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे आपको कोई नया भक्त नहीं मिला, उसको भेज देते माला और गार्ड लेकर, इतना सेवा आप क्यों कर रहे हो। जैसे कोई आते तो हम क्या करते हैं, किसी को भेज देते ना, जाओ माला लेकर पहना के आ जाओ या तो वैसे ही शैलपूर्ण इतने महान आचार्य थे, अपने आप में बहुत पावरफुल। वो जब आए रामानुजा ने पूछा ये उचित नहीं है मुझे आपसे सेवा स्वीकार करना, आप किसी नए भक्त को भेज देते गार्लैंड और प्रसाद लेकर। उन्होंने कहा मैं तो सारा तिरुमला हिल ढूंढ लिया, नया भक्त मिला नहीं, नया भक्त कौन हो, मैं हूं, इसलिए मुझे आना पड़ा। सारे मुझसे प्रभु है, सारे मुझसे उन्नत है, सीनियर है। हाँ, तो ये भावना, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो रामानुजा पिघल गए, रामानुजाचार्य। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य स्वीकार करते हैं उनसे माला और उस चीज को। तो श्री वैष्णव संप्रदाय और वही भावना को आप देखेंगे प्रभुपाद भागवतम के चतुर्थ स्कंध में भी प्रकट करते हैं। जब ध्रुव का चरित्र प्रभुपाद ने वर्णित किया, ट्रांसलेट किया, तो उसमें जब ध्रुव महाराज की को विष्णु दूताज ले जा रहे थे तो उनको विचार आया मेरी मदर को भी ले गए कि नहीं। तो विष्णु दूता ने कहा आपकी मदर देखो साइड में दूसरा विमान जा रहा है, उसमें जा रही है। तो प्रभुपाद ने कहा, उसमें लिखा कि ऐसे ही मेरा कोई एक शिष्य हो, ये मेरा छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा, जो मेरा क्या करे वो उद्धार करे। हाँ, तो हमारे संप्रदाय पर श्री वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रभाव है, शिक्षाओं का भी। इवन जो डीटी वर्शिप आदि है, गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे, हाँ, श्री संप्रदाय से आए हैं, सिक्स गोमे स्वामी से एक, उन्होंने यहाँ शिक्षा प्रदान की, हाँ, हरिभक्ति विलास आदि और जो डीटी वर्शिप वगैरह उन्होंने दी है सारी शिक्षाएं। और जीव गोस्वामी ने जो षड संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं उसमें भी अधिकतर उन्होंने रामानुजाचार्य को कोट किया है। और इवन भक्ति सिद्धांत महाराज के ऊपर बहुत प्रभाव रामानुजा का था, वो सन्यास भक्ति सिद्धांत महाराज ने किसी को कॉपी किया है तो रामानुजाचार्य को किया है। इसलिए जब उनको दीक्षा देना था रामानुजाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, तो उन्होंने दीक्षा का प्रोसेस सीखने के लिए कहां गए थे, श्रीरंगम, वहां श्री वैष्णव संप्रदाय के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, और फिर यहाँ उन्होंने गौड़िया संप्रदाय में लागू किया। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वो आचार्य हैं जिनका जीवन बहुत इंस्पायरिंग है, और उनके जीवन में दो चीजों को हम देखते हैं, एक है अनन्य भावना से समर्पित होकर सर्व करना, और दूसरा है वैष्णवों को सर्व करना। ये चीज इस संप्रदाय में देखी गई है। तो ऐसे रामानुजाचार्य अपना शरीर त्यागते हैं तो उससे पहले भी वो बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, और शरीर स्वयं छोड़ते तो कैसे छोड़ते हैं, अपने दो शिष्य एक थे जिनका नाम था गोविंद, उनके गोद में अपना सर रखते हैं, और उनके दूसरे शिष्य थे आंध्रपूर्ण, उनके गोद में अपने चरण रखते हैं, और सामने अपने आध्यात्मिक गुरु यमुनाचार्य के जो पादुकाएं हैं उनको देखते हुए ये शरीर से पलायन करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीपद रामानुजाचार्य अपने शरीर को त्यागते हैं, और वो बहुत अधिक समर्पित हैं किनके प्रति, अपने गुरु वृंद के प्रति, उनके सेवा के प्रति, और उनके विशेष जो प्रिय विग्रह थे वो थे वरदराज। कांचीपुरम आप जाते हैं तो वहां वरदराज के विग्रह है। तो रामानुजाचार्य का स्मरण हमें करना चाहिए, और जितना हो सके इन आचार्यों के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जैसे वो दल क्या जलाते ना, मोमबत्ती को होते, दूसरा है ऑयल डाल के
दिया
हाँ, तो दिया का ऑयल जब खत्म होने लगता है तो उसका लो भी छोटी हो जाती है। वैसी हमारी स्थिति रहती है भक्तिमय जीवन में, है ना, कभी कभी तो भड़कीली आग की तरह जल उठते हैं, फेस्टिवल या कुछ आता है, कभी कभी तो अधिकतर समय तो लो छोटी होती है साइज में, खुद को ही प्रकाश नहीं दे पाते तो दूसरों को कैसे देगी। तो हमारे लिए ऑयल की आवश्यकता है, और ऑयल है भक्तों का एसोसिएशन, और इन आचार्यों के बारे में पढ़े, श्रवण करें, चर्चा करें, गुणगान करें, हाँ तो हम प्रकाश महसूस करते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य बहुत ये थे, बहुत उन्नत थे लेकिन बहुत विनम्र भाव था उनका, किनके प्रति, अपने गुरु ग्रंथ के प्रति। तो वो अपने शुरुआत के जीवन में कांचीपूर्ण से सीखते थे, कांचीपूर्ण को छोड़कर फिर उन्हें महापूर्ण से दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी, फिर गोष्ठी पूर्ण, उनके जीवन में सब कुछ पूर्ण पूर्ण थे ठीक है ना। तो हमारा जीवन भी पूर्ण हो सकता है जब हम ऐसे गुरु और वैष्णवों की सेवा में लगे बिना किसी हिचकिचाहट के, और कैसे, आनंद के साथ। अधिकतर हम दुखी होकर सेवा में लगे रहते हैं नहीं हाँ, तो कैसे जॉय अनुभव करेंगे हम, हाँ, इसलिए बहुत आनंद है भक्तों के संग में आना और कृष्ण का गुणगान करना बस, हाँ, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तांदेरा चरण सेविक भक्त सनेवास, जन्म है यही अभिलाष। कब वो दिन आएगा, तांदेरा चरण पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करूंगा और भक्तों के संग में रहने का मुझे मौका मिलेगा, और यही मैं कामना करता हूँ कि उनके संग में रहूं जन्मों जन्मों तक। तो यही प्रार्थना श्रीपद रामानुजाचार्य के लिए हमें करनी चाहिए उनके चरणों में, और गौर निताय से भी कामना करनी चाहिए कि मुझमें ये भावना दे दो, इन वैष्णवों का, भक्तों का, आचार्यों का गुणगान करो अपने जीवा के द्वारा, और गौर निताय आपका जो गुणगान है उसको निरंतर करने का प्रयास करो। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव के, श्री श्री निताय गौर सुंदर के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेम।